श्लोक संख्या 29 अध्याय 2।
आश्चर्य पश्यति कश्चिन देन माश्चर्यवद्वादि तथैव चान्य आश्चर्यवश्चैन मन्या शृणोति श्रुत्वा पेनं वेदन चैव कश्चिद्।
ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते।
हरे कृष्ण।
देही नित्यम अवद्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि।
हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, अब भगवान अधिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। श्रील प्रभुपाद की
जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो श्लोक संख्या 29। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। सारा आश्चर्य ही है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, ये भी आश्चर्य ही है। नहीं, इसके बारे में सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, नहीं बहुत बड़ी बात है ये, क्या कम बड़ी बात है। तो इसमें कहा गया है कि कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग इसका वर्णन एकदम आश्चर्यचकित होकर इसका वर्णन करते हैं, है ना, आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग बड़े आश्चर्य से इसका वर्णन करते हैं, अमेजिंग, नहीं अमेजिंग, नहीं ऐसे बोलते हैं, क्या आत्मा है, अमेजिंग। सो अमेजिंग। और कुछ लोग बड़े आश्चर्य से सुनते हैं, ये भी जरूरी है, नहीं आत्मा के बारे में बड़े आश्चर्य से सुनते हैं, उदास होके नहीं सुनते हैं, आश्चर्य, हाँ ऐसा ऐसा, इतना आश्चर्य आत्मा के बारे में सुनने के लिए, उदास होके ऐसे डल बैठे ऐसा नहीं, आश्चर्य से सुनते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारा सुनने के बाद भी उनको समझ में ही नहीं आता है, ऐसे भी लोग हैं, भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। तो लोगों के प्रकार जो आत्मा को आश्चर्य मानते हैं, वो क्यों आश्चर्य मानते हैं, क्योंकि एक यही आत्मा सर्व योनि को निर्माण करने का कारण है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, इस बात को आश्चर्य मानते हैं, क्योंकि आत्मा बार बार अनेक प्रकार के शरीरों में जाता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छा सा वर्णन किया है कि आत्मा बार बार एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, कितने तो शरीर बदलते रहता है, प्राप्त करते रहता है, और ये आत्मा ही अनेकों योनियों का कारण है, कितने आश्चर्य की बात है, नहीं। इस प्रकार से कुछ लोग इसको आश्चर्य मानते हैं, जो केवल और जो केवल इंद्र तृप्ति में लगे हैं उनके लिए आत्मा का विषय बहुत गहन है, बड़ा सूक्ष्म है। जो केवल इंद्रिय तृप्ति ही जानते हैं उनके सामने आप कितना भी आत्मा आत्मा चिल्लाओ, उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, उनके लिए विषय बहुत गहन है। और जो आत्मा का स्वीकार तो करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग आत्मा का स्वीकार तो करते हैं परंतु आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, स्वीकार करते हैं आत्मा है, शरीर है, अलग अलग है, परंतु आत्मा और परमात्मा एक ही है, इस बात का भी वो लोग आश्चर्य करते हैं, फिर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं फिर भी आश्चर्यचकित, वो भी एक आश्चर्य का कारण है। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी महाराज ने बहुत विस्तार से समझाया है, जो हम जिसकी फिर चर्चा करेंगे। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि आत्मा को समझने की सबसे आसान प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने चार मुख्य बातें बताई है। आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि जहां भी त्रिस्तुप छंद है उस वैसे श्लोक में ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, पर ज्यादातर भगवान ने चार उपदेश या चार विशेषताएं बताई है, उन चार लाइन में चार विशेषताएं होती है। ऐसे प्रत्येक श्लोक को ढूंढ सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या विशेषता है। प्रभुपाद जी महाराज ने बहुत अच्छे से तात्पर्य में लिखा है, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं। तो पहली जो लाइन है इसमें कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम्, जीवात्मा को आश्चर्य के समान देखता है, मतलब इस जीवात्मा को आश्चर्य के समान समझता है, देखता है। अब यहां प्रश्न आएगा कि भगवान देखने की बात क्यों कर रहे हैं आत्मा को, अभी तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सूक्ष्म है, देखा ही नहीं जा सकता। यहां तो भगवान बोल रहे हैं कि जीवात्मा को देखने के बाद उसको आश्चर्य होता है, ऐसे लोग भी हैं। और पहले तो भगवान ने कहा है, क्या कहा है, हाँ आत्मा को देख नहीं सकते, सूक्ष्म है, बाल का वो 10,000 पार्ट है ना, इतना सूक्ष्म है और वो दृष्टि से देख नहीं सकते। और यहां क्या कह रहे हैं कि देखने वाला आश्चर्यं तत्पश्यति कश्चिदेनम, जीवात्मा को आश्चर्य के समान जो देखते हैं वो बहुत विरले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत रेयर, और क्या कहते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, एकदम कहीं कभी कभार एक हाथ टकरा जाता है वैसे। वो कैसे देखते कैसे है, यहां कहा गया है भगवान जीवात्मा को, भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को देखने वाले आश्चर्यचकित होते हैं, और पहले कहे हैं कि जीवात्मा को देखा नहीं जा सकता है। तो क्या भगवद गीता में सब कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है, ऐसा है क्या? तो क्या है, अभी कहते हैं देख सकते हैं, अभी देखना चाहिए, देखते हैं, अभी कहते हैं कि देखा नहीं जा सकता है, हाँ? वो तो दूसरी लाइन है श्रवण की, हाँ थोड़ा बहुत ठीक, हाँ। यहां भगवान जो कह रहे कि देखो, उस देखने का अर्थ है समझो, आत्मा को समझो, है ना, समझने की बात यहां पे भगवान कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि ऑपरेशन करके आत्मा को देखो कॉनिकल फ्लास्क में लेके, देखने की बात नहीं है यहां, बात भगवान क्या कह रहे हैं, समझना, इस आत्मा को जो समझते हैं, दोज हु अंडरस्टैंड, हु रियलाइज, अनुभूति जिसको होती है, समझते हैं, वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भगवान ने नौवे अध्याय के पांचवें श्लोक में और एक बार कहा है, वो कहते हैं पश्चम में योगमैश्वराम, पश्चम में योगमैश्वराम, यहां पे कहा है, आप इस श्लोक को देखेंगे तो कहते हैं आश्चर्यं वत् पश्यति, और नवे अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा है पश्चमे पश्यति, पश्चमे योगम ऐश्वरम। या भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे भगवान पश्चमे योगम ऐश्वरम, मतलब मेरा योग और मेरा ऐश्वर्य देखो, इसका अर्थ क्या है। जैसे कि अभी कह रहे हैं भगवान जीवात्मा को देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे ही नवे अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन मेरा भोग योग और ऐश्वर्य देखो, योग देखो ऐश्वर्य देखो, पश्चमे योग ऐश्वर्य। तो मेरा ऐश्वर्य और योग देखो, भगवान का ऐश्वर्य देखने का क्या है, वो तो रोज हम देखते हैं, सारी प्रकृति भगवान का ऐश्वर्य है, सारा संसार त्रिभुवन तीन लोग सब भगवान का ही तो ऐश्वर्य है, किसका ऐश्वर्य है। पर प्रॉब्लम क्या है, भगवान यहां बोल रहे हैं कि यह मेरा योग और ऐश्वर्य देखो, मतलब मेरा योग और ऐश्वर्य समझो, ये नहीं कि केवल देख लो और काम फिनिश। ऐसे तो हम भगवान को साक्षात रोज देखते हैं, नहीं देखते शाम सुबह शाम मंदिर में विग्रह के रूप में, समझते कितना है, हाँ देखने को तो रोज ही देखते हैं। हाउ मच वी रियलाइज, कितना हमको रियलाइजेशन मिलता है, कितना हम भगवान को समझते हैं, भगवान को समझते हैं मतलब भगवान के साथ हमारे संबंध को समझते हैं, कितना समझते हैं। मंदिरों में तो बहुत जाते हैं, भगवान के सामने अर्चे विग्रह में तो बहुत जाते हैं, तो समझते कितना है। तो यहां भगवान इसके बारे में कह रहे कि जो समझते हैं वो विरले हैं, जो आत्मा को समझते हैं। पर इस आत्मा को समझने के लिए या भगवान का ऐश्वर्य समझने के लिए फिर भगवान क्या कहते हैं, पंद्रहवें अध्याय में कहते हैं, देखिए तीन पश्यति आ गए, फिर कहते पश्यति ज्ञान चक्षुः। इस अध्याय में क्या आया है ध्यान से देखिए, फिर एक बार बोलता हूं आश्चर्यं पश्यति, फिर नवे अध्याय के पांचवें श्लोक में पश्चमे भोग योगम ऐश्वर्यम, और फिर 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में पश्यति ज्ञान चक्षुष। तो इस श्लोक में फिर रिपीट करता हूं, इस श्लोक में पश्यति मतलब भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को समझो। जैसे कि भगवान 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि योग ऐश्वर्य समझो, मेरे अयोग को समझो, मतलब मेरे से जुड़ने की बातों को समझो, योग को समझो। इसका अर्थ क्या है? योगम ऐश्वर्यम पश्य पश्यम योगम ऐश्वर्यम। तो इसका अर्थ क्या है? पश्यमे योगम ऐश्वर्यम। योग का अर्थ क्या है? तो मेरे साथ आप जो जुड़ गए हो या जुड़े नहीं हो, जो भी कुछ है, इस बात को समझो। किस बात को? अपने रिलेशनशिप को समझो और अपने मेरे ऐश्वर्य को समझो, मेरे और आपके बीच के रिलेशनशिप को समझो। शुरुआत कहां से हुई? इस श्लोक से। यहां कह रहे पश्यति, क्या आश्चर्यम वत पश्यति, आत्मा को समझो, फिर मेरे साथ आपके जो रिलेशंस है, जो संबंध है, उसको समझो, और ये सारी जो प्रकृति, जो ऐश्वर्य है मेरा, इसको समझो। लेकिन 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं पश्यति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। बड़ी कमाल की बात है। पहले तो बोल रहे कि देखो, पहले बोल रहे हैं कि आत्मा को देखो। जब हमने बोला कि भगवान, आपने पहले बोला आत्मा को नहीं देखा जा सकता, वो सूक्ष्म है, तो भगवान कहते देखने का अर्थ है समझो। अच्छा ठीक है, कैसे समझे? तो भगवान कहते जैसे तुम मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध है उसको जैसे समझते हो, ये ऐश्वर्य को समझते हो, उसी प्रकार से आत्मा को भी समझो। या जिस प्रकार से आत्मा को समझते हो उसी प्रकार से मुझे समझो। कोई भी बात, कोई भी पहली एक बात करो, या तो आत्मा को बेस्ट वे है कि आत्मा को पहले समझो। आत्मा को समझो, फिर आत्मा को समझने के बाद मेरे साथ आपके जो संबंध है उसको समझो, और फिर मेरे ऐश्वर्य को समझो। अब ये सब समझने के लिए क्या करना है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, 15वें अध्याय का 10वां श्लोक। इसके लिए, ये समझने के लिए पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु चाहिए। उस ज्ञान चक्षु के बिना ये समझना मुश्किल है। देखिए अभी ये ध्यान में रखिए, बहुत महत्व का श्लोक है, नहीं? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिसके पास ज्ञान चक्षु है वे ही आत्मा को समझ पाते हैं। इसका अर्थ दूसरा ये है। और जो आत्मा को समझ पाते हैं वो पश्यमे योगम ऐश्वर्यम, वो भगवान को भी समझ पाते हैं। और जो भगवान को समझ पाते हैं उनका ही भगवान के साथ गहरा संबंध हो सकता, बाकी सारा भ्रम है, बाकी सारा भ्रम है कि नहीं? गलत बात है कि भगवान बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, है सिंपल लेकिन बहुत महत्व। तो इसलिए ज्ञान चक्षु के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी 15वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान चक्षुषा, यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब ज्ञान चक्षु, ज्ञान की आंख, तीसरी आंख, सबको, हम सबको तीसरी आंख है। वो तीसरी आंख का नाम क्या है? ज्ञान चक्षु। ये जो दो आंखें, ये अज्ञान चक्षु है। क्योंकि ये सारा कुछ बाहर का ही दिखाते, अंदर का कुछ नहीं दिखाते। ये बाहर ही खुलती है ना, अंदर खुलती ही नहीं है। इसका डोर बाहर से है, ये बाहर खुलती है, सबका सब बाहर का दिखाती है। बाहर का जो कुछ भी है वो अनस्टेबल है, अस्थिर है, और जो कुछ भी अस्थिर है वो अज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो अस्थिर है वो पूर्ण कभी हो नहीं सकता, जो अस्थिर है उसका जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, अज्ञान है। इसलिए ये जो चक्षु है ये तो कुछ काम की चीज है नहीं, पर एक जो हमारा तीसरा चक्षु है वो बहुत महत्व का है, वो है ज्ञान चक्षु। प्रभुपाद जी महाराज इस श्लोक के 15.10 इसके तात्पर्य में कहते हैं कि ज्ञान चक्षु अतिशय महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो अंदर खुलता है, ये अंदर सारा पिंडी थे ब्रह्मांडी, मतलब जो ब्रह्मांड में वही पिंड में मतलब इधर अंदर सब वही सिस्टम है, जो ब्रह्मांड की सिस्टम है ना सोलार सिस्टम, वो पूरी की पूरी सिस्टम इधर अंदर है। पिंड थे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड थे पिंड, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, लेकिन उसके देखने अंदर का देखना है तो अंदर की आंख चाहिए ना, नहीं उसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। इसलिए प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं बहुत महत्व का है, बिना ज्ञान के कोई न तो ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार से त्यागता है। बताइए कोई समझ सकता है? बिना ज्ञान से, यदि हमको ये ज्ञान नहीं है तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जीव इस शरीर को कैसे छोड़ता है। भाई जिसने किसने शरीर छोड़ा वो व्यक्ति हमको ये बताने के लिए हाजिर रहा ही नहीं ना। जो कुछ भी शरीर छोड़, जो कोई भी शरीर छोड़ के गया वो तो हाजिर नहीं है हमको बताने के लिए कि देखो ये जो है शरीर छोड़ने का प्रोसीजर ऐसा है, अभी अभी मैंने छोड़ा इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसा है क्या? इसलिए भगवान स्वयं बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, यदि ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है तो ये समझ ही नहीं पाएंगे जीवन भर कि ये जो आत्मा है ये शरीर किस प्रकार से छोड़ता है, क्या होता है शरीर छोड़ते वक्त, ये इंटरनल फीलिंग क्या होता है। तो यदि ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो इस बात का भी हमको पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, ये बात नहीं पता चलेगी, दूसरी बात और एक बात दूसरी पता नहीं चलेगी, वो ये है कि ये शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे कहां, कैसे और कहां जाते हैं, कहां जाएंगे ये तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, लेकिन जहां कहीं जाएंगे उसकी प्रोसेस तो पता चलेगी, क्या करने से कहां जाते हैं, है कि नहीं, पर वो कैसे पता चलेगी? ज्ञान चक्षु बंद है, सो रहे हैं, पूरी तरह से गहरी नींद में है, माया देवी के पूरी तरह से समर्पित है माया देवी को, तो ज्ञान चक्षु खुलेगा ही नहीं, और ज्ञान चक्षु खुलेगा नहीं तो ये बातें हमको पता ही नहीं चलेगी, बिल्कुल पता नहीं चलेगी किस प्रकार से क्या होता है, हमको क्या लेना देना होगा तब देखा जाएगा, नहीं जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से क्या करना है, और जब वो समय आएगा तब पता चलता है कि अरे 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 अभी तक बहुत कुछ किया जा सकता था, अभी ये बिच्छू काट रहे अभी भयंकर वेदनाएं हो रही है, अभी कुछ सोचने के लिए शक्ति नहीं है, वेदनाएं इतनी हो रही है कि ये आत्मा किधर से किधर कैसा जाता है कि क्या, ये सोचने के लिए इतनी वेदनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोचने के लिए समय नहीं है, सोच ही नहीं पा रहे क्योंकि वेदनाएं टॉर्चर कर रही है, भयंकर टॉर्चर हो रहा है, नहीं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं ये 15.10 के तात्पर्य में कि शरीर को किस प्रकार त्यागते ये भी पता नहीं चलेगा, और इसके बाद ये शरीर कहां जाता है ये भी पता नहीं चलेगा, अथवा यह भी नहीं पता चलेगा कि विशेष प्रकार के शरीर में ये आत्मा क्यों जाता है, कोई विशेष शरीर में ही आत्मा क्यों जाता है ये भी पता नहीं चलेगा। तो ज्ञान चक्षु बंद रहने से कितनी बातें पता नहीं चलेगी, बहुत सारी बातें पता ही नहीं चलेगी। इसलिए प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं ज्ञान चक्षुषः, ये जो शब्द है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जिनके पास ज्ञान चक्षु है वे ही इन बातों को समझ सकते। कौन सी बातों को? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहां जाता है, कैसे जाता है, और वो विशेष प्रकार का शरीर ही क्यों प्राप्त करता है? तो ये केवल ज्ञान चक्षु से ही पता चलता है। ज्ञान चक्षु वाले व्यक्ति किस प्रकार से आत्मा के बारे में आश्चर्यचकित होते हैं, मतलब जिसका ज्ञान चक्षु खुल गया है वो भी जब आत्मा का दर्शन करता है या आत्मा के बारे में सोचता है, समझता है या रियलाइज होता है, उसको अनुभूति होती है, तो वो किस प्रकार से आश्चर्यचकित करता है इसके भी बारे में श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहे, इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित कीटाणुओं में अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चय ही आश्चर्यजनक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे, मतलब जो व्यक्ति का चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल गया है उसको भी आत्मा के बारे में बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन कौन सी बात पे आश्चर्य लगता है? उनको इस बात पे आश्चर्य लगता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे कि ये आत्मा एक समय एक बहुत बड़े विशाल वट वृक्ष में भी आत्मा रहता है और वही आत्मा उस वट वृक्ष से निकल के फिर कोई कीटक में चला जाता है जिसकी साइज आप देख भी नहीं सकते, वो माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है देखने के लिए। मतलब एक क्षण एक समय तो यह आत्मा इतना बड़ा विशाल शरीर प्राप्त करता है, एक समय तो यह आत्मा एकदम हत्ती का शरीर प्राप्त करता है और दूसरे क्षण यह आत्मा चींटी बन जाती, चींटी बन, आश्चर्य की बात है नहीं? लेकिन ऐसा नहीं कि फिर वो आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर उसका इतना सा टुकड़ा चींटी बन गया, ऐसा नहीं है। आत्मा इस प्रकार से विशालतम वस्तुओं को प्रकट करता है और एकदम अणु, न्यूनतम, लघुतम, एकदम छोटे से छोटे वस्तु को भी प्रकट करता है। विशेष बात है कि नहीं? एक जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा बीज सीड होता है उसको उगाओ तो उसमें से कितना बड़ा पेड़ निकल जाता है, प्रभुपाद जी कई बार ये उदाहरण दिए हैं। तो ये आत्मा की विशेषता है कि इतना बड़ा से बड़ा व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है और छोटे से छोटे माइक्रोब्स कीटाणुओं में भी वो आत्मा जाता है। आत्मा वही है, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा वही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हमने पहले बताया कि आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को समझना पड़ता है, आत्मा को रियलाइज करना पड़ता है। आप बोलेंगे आत्मा, हम आत्मा को देखते हैं, तो देखने वाली ये बात नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इधर करंट बह रहा है ना, ये ट्यूब में करंट है, वायर है, सामने दिख रही है, आपने बहुत हट किया कि नहीं हमको समझना नहीं है, देखना है। मान लो किसी ने बहुत ही आग्रह किया, नहीं समझने की बात छोड़ो, बात करो समझने की बात, हमको देखना है, तो देखो कैसे देखेंगे, तोड़ो तार को देखो क्या हो जाएगा। शॉक लग जाएगा लेकिन फिर भी दिखेगा नहीं, आपको समझ में आएगा लेकिन फिर भी दिखेगा नहीं। पूरी तरह से करंट की व्याख्या कर पाएंगे आप एकदम अच्छे से, समझ में आएगा लेकिन पूछे आपको कि देखो दिखाओ कैसे देखा आपने, देखा स्वरूप बताओ करंट का, सब बताओगे, ऐसा लगा वैसा लगा, बहुत दुख हुआ, झटका बैठा, वीक हो गया, ये हो गया, फलाना ढिकाना। लेकिन हम बार बार आपको पूछे कि नहीं 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 उसका आकार बताओ, आकार इतना आपको परेशान कर दिया उसने, तो उसका आकार दिखाओ। बोले अरे मैं इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने जिस बात को अनुभव किया है, रियलाइज किया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, देखना इससे बड़ी बात है क्या? देखना इससे बड़ी बात है, रियलाइज करने से भी बड़ी बात देखना है कि देखने से बड़ी बात अनुभव करना है, बताइए क्या, कौन सी बड़ी बात है? तो जो लोग मूर्ख है संसार में पड़े हुए वो बार बार बोलते भगवान को दिखाओ, आत्मा को दिखाओ, उनको करंट लगाओ 440 का मूर्ख है। देखने से ज्यादा महत्व की बात अनुभव करना है, ये अनुभव करते हैं। ये इसी प्रकार से ये आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कितनी आश्चर्य की बात है। वो ताजमहल और ये फलाने, ये सब आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो ये है सबसे बड़ा, वास्तव में आश्चर्य रियल। ताजमहल तो और 100-200-400 साल में खत्म हो जाएगा, तो कौन सा आश्चर्य है? खत्म होने वाला कभी आश्चर्य होता है क्या? हाँ, आश्चर्य तो यह है कि एक आत्मा किस प्रकार से एकदम विशालतम वृक्ष का शरीर प्राप्त करता है और दूसरे समय वही आत्मा चींटी बन जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे कि वही आत्मा एकदम एक इंच जगह में करोड़ों कीटक रहते हैं, एक इंच की जगह, एक इंच, एक स्क्वायर इंच में एक करोड़ कीटक रहते हैं, है ना। बैक्टीरियाज जो आज वायरल इंफेक्शन हम बोलते हैं, क्या है वायरल इंफेक्शन? वायरल इंफेक्शन है क्या है? हवा में कीटाणु है और क्या है? और एक इंच के जो स्क्वायर एरिया है, जो एक स्क्वायर इंच जो एरिया है, उसमें करोड़ों कीटाणु है। रूपाज जी बोल रहे हैं कि वो उसमें के एक कीटाणु में वही आत्मा जाता है जो एक बड़े कल्प वृक्ष समान बड़े वृक्ष में, वट वृक्ष में रहता है। तो वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है। तो जो लोगों का चक्षु, ज्ञान चक्षु खुला हुआ है, उन लोगों को इस बात का आश्चर्य होता है। किस बात का? हाँ, उनको ताजमहल का आश्चर्य नहीं होता है, आईफल टावर का आश्चर्य नहीं होता है, उनको ये सब फालतू बातों का, खत्म होने वाली, फालतू नहीं कहूंगा पर खत्म होने वाली बातों का आश्चर्य उनको नहीं। उनको पता है इसमें आश्चर्य करने वाली बात है क्या, क्योंकि बाद में कुछ समय बाद ये बदलेगा सब। इसलिए हम कौन से कैटेगरी में हैं? ज्ञान चक्षु तीसरी आंख बंद है कि तीसरी आंख खोली है कि खोलना चाहते हैं? बंद है तो खोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से अणुआत्मा की उपस्थिति जो कीटाणुओं में या छोटे से इसमें होती है, उसको आश्चर्यचकित, उससे ये जीवात्मा जिनकी ज्ञान चक्षु खुली हुई है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। आपने पढ़ा तात्पर्य ध्यान से? उसी में ऐसे के ऐसे कहा है श्रील प्रभुपाद जी। तो व्यक्ति क्या होता है, देखिए किस प्रकार से इस आत्मा को समझे, आत्मज्ञान को कैसे, आत्मा को कैसे समझे, आत्म चक्षु को, मतलब ज्ञान चक्षु को खोल के आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। मतलब ये ज्ञान चक्षु, ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाएगी और जैसे ही खुलेगी उसको पहले क्या दिखेगा? आत्मा ही दिखेगा, प्रकाश दिखेगा अंदर, सब एनर्जी, कॉन्शियसनेस, चेतना, ज्ञान चक्षु देख सकता है। परंतु इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञान आवश्यक है और वो आत्मज्ञान जब प्राप्त होगा तभी हम आश्चर्यचकित होंगे। ये शुरुआत को जो है ना, हम लोग एकदम भगवान के भव्य जो मतलब भव्यता को दिव्यता समझते हैं, नहीं? हम शुरुआती शुरुआती कुछ आध्यात्मिक बातें समझने का जब प्रयास करने में जुट जाते हैं, शुरुआती समय में हम बहुत सी बातें समझने का प्रयास करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं, पर उस शुरुआती दौर में होता क्या है, हमको जो भगवान की जो भव्यता है केवल वही दिव्यता लगती है। जैसे कि मान लो हम गए गंगोत्री यमुनोत्री प्रयाग और उधर ऋषिकेश वगैरह गए हम लोग, और जब ऋषिकेश गए और जब आप हिमालय देखोगे, हाँ इतना विशाल, इतना बर्फ, ओह इतना बड़ा हिमालय, क्या भगवान की दिव्यता है, हा? मतलब भगवान की जो भव्यता है उसी में हमको दिव्यता दिखती है। फिर बॉम्बे में आ गए तो चौपाटी में गए, जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, और फिर समुद्र को देखा, समुद्र को देखा तो आह क्या भगवान की भव्य दिव्यता है, हा? वो भव्यता में भगवान की दिव्यता दिखती है शुरुआती दौर में। फिर समुद्र किनारे से घर पे आते तो कुछ नहीं दिखता है कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, सब एज यूजुअल है। फिर भगवान का दिव्यता वगैरह कुछ नहीं दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है, अपने संसार चक्र में फंस जाते हैं। तो शुरुआती दौर में केवल भव्यता में ही दिव्यता दिखती है, कोई बहुत विशाल काय कुछ दिखता है तभी लगता है क्या भगवान का शक्ति है, नहीं क्या भगवान की निर्मिति है, बड़ी विशेष है, बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है। पर जैसे ही फिर सत्संग में आते हैं, फ्राइडे क्लास, वेनसडे क्लास, संडे टेम्पल प्रोग्राम, एवरीडे कार्तिक में दीपदान, ऐसे दो चार बार हो जाता है, दो चार कार्तिक हो जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं। वो ज्ञान चक्षु थोड़ा सा ज्यादा नहीं खुलता है, थोड़ा बहुत, फिर सोचने लगते हैं कि अरे रोज समय पे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, क्या आश्चर्य की बात है कि नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, केवल भव्य बड़ी बड़ी वस्तुएं निर्मिति भगवान की देखे तभी हमको आश्चर्य लगता था, लेकिन थोड़ा सत्संग बढ़ गया, थोड़ा भगवान का स्मरण बढ़ गया, थोड़ा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना शुरू हो गया, तो फिर थोड़ा एडवांसमेंट हो गई है। अब ना कि केवल भव्यता में ही हमको दिव्यता दिखती है, लेकिन जो दैनंदिन रोज जो बातें होती है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, यह भी हमको बड़ी दिव्यता लगती है। सूर्योदय और सूर्यास्त तो सदियों से हो रहा है, लेकिन हमको आज उसका दिव्यता मालूम पड़ रहा है कि नहीं, दिव्य है कि नहीं। वो कैसे उगता है समय पे, कैसे अस्त होता है समय पे, कोई है उसको घंटी बजाना, ठंड 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 ठंड, उगो उठो जागो, उगो ठंड ठंड ठंड, अस्त हो जाओ डूबो, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। तो इसकी दिव्यता मालूम पड़ने लगती है सत्संग में जब हम आते हैं। अब क्या हुआ, अब सत्संग तो बड़ा रेगुलर शुरू हो गया, बुधवार शुक्रवार रविवार, अब काउंसलिंग में भी रेगुलर आने लग गए। अच्छा, इतना फर्क पड़ गया, अब आपको दिव्यता देखो कहां दिख रही है, अब आपको जो फल फ्रूट फूल, जब फल हाथ में लोगे फूल हाथ में लोगे, क्या भगवान की दिव्यता है। फल हाथ में आएगा, किसने बनाया इसको, इतना ब्यूटीफुल फूल, इतना सुंदर फूल किसने बनाया, इतना टेस्टी, इतना रस रसीत आम किसने बनाया, ये फल किसने बनाया, ये फूल किसने बनाया। इस प्रकार से जब काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो फल और फूलों में भी दिव्यता नजर आती है, दिखने लगती है, आश्चर्य लगने लगता है। अभी तक तो ये फूल और फल कई हजारों देखे और कुछ लगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला है कोई वस्तु है, परंतु जब और आप रेगुलर हो जाते हैं तो पता चलता है कि ये फूल और फल भी वास्तव में कितना बड़ा आश्चर्य है। नहीं, आश्चर्य है कि नहीं, कोई कंपनी बना सकती है इसको, फूल को फल को कोई नहीं बना सकता है। तो इस प्रकार से जब बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, रविवार हो गया, काउंसलिंग भी एकदम रेगुलर हो गया, अब फेस्टिवल और यात्रा में भी जाने लग गए और साथ ही सोला माला भी जप कर रहे हैं। देखिए अब कंप्लीट पैकेज हो गया अब काउंसलिंग रेगुलर है, सोला माला जप रेगुलर है, यात्राएं हो रही है, अब हमको धीरे धीरे पता हो रहा है कि ये जो सब कुछ बनाने वाला है समुद्र, ये जो विशाल पर्वत, ये जो समुद्र है, ये जो सूर्य देव है, ये जो फल है फूल है, सारी प्रकृति है, इनका जिसने निर्माण किया है वो भगवान का अंश तो मेरे अंदर ही है। क्या आश्चर्य है, नहीं बहुत बड़ा आश्चर्य है कि नहीं। वो जो अंश है वो मेरे अंदर है। अरे अभी तक मैं सोचा ही नहीं, अभी पता चल रहा है इतना रेगुलर होने के बाद। क्यों? क्योंकि तब वो ज्ञान चक्षु खुलता है और वो उस आत्मा का जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है उसको ओपन करता है, उसको उसको हमको समझाता है, समझा देता है कि देखो ये है आत्मा हमारे अंदर और ये किसका अंश है? वो भगवान का अंश। और वो कौन है? अभी तक जो सब कुछ दिव्य आप समझ रहे थे उसको बनाने वाले वही है, उन्हीं से सब कुछ आता है। तो इस प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त होगा तभी जाके आत्मा की विशेषता और वो आत्मा किस प्रकार से हमको आश्चर्यचकित करता है वो बातें हमको समझ में आएगी। और आत्मज्ञान बिना सत्संग, बिना तपस्या, तपस्या मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप, बिना यात्रा के हो नहीं सकता है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आत्मा की ये बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात है, नहीं? बड़ी आश्चर्य। आत्मा जो शरीर प्राप्त करेगा उसको चला लेता है। जैसे ड्राइवर होता है, मान लो कार का ड्राइवर एकदम मर्सिडीज कार चलाता होगा ड्राइवर, तो वो विमान प्लेन चला सकता है? नहीं चला सकता, जरूरी नहीं है। कोई टू व्हीलर पर चलाने वाला एक्सपर्ट होगा लेकिन फोर व्हीलर चला सकता है? जरूरी नहीं है, नहीं चला सकता। परंतु आत्मा को कोई भी व्हीकल मिल जाए उसको चला लेता है। आश्चर्यचकित करने वाली बात है। जलचर प्राणी बन जाता है कभी, पानी में मछली पानी में रहती है ना, वो कभी कभी ये जीवात्मा मछली का शरीर प्राप्त करता है और बड़े आराम से समुन्द्र में या पानी में नदी में तैरता है। उसको ऐसे नहीं लगता, अरे कैसे अभी तो मैं फलाना था, अभी ये कैसे चलाऊ, ये व्हीकल कैसे चलाऊ। और उसके बाद तुरंत एक मच्छर बन जाता है, तो मच्छर बनता है तब भी वो शरीर को प्राप्त करके उड़ता है, इधर उधर काटते रहता है सबको, डेंगू फैलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस बात को समझना चाहिए कि जो आत्मा है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, वो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और वो आश्चर्य हमको तभी समझ में आएगा जब हमारा ज्ञान चक्षु खुलेगा, अंदर की आग जब हमारी खुल जाएगी, तब तक कुछ आश्चर्य आश्चर्य नहीं लगेगा, तब तक तो सब चल रहा है। कुछ दिव्यता पता ही नहीं चलेगी, इस संसार में कितनी सारी दिव्यताएं हैं, दिव्य बातें हैं, हमको नहीं समझ में आएगी। तो हमको नहीं समझ में आएगी तो उसका मनुष्य शरीर का उपयोग क्या है? इसलिए सर्वप्रथम कार्य क्या है? सत्संग में रेगुलर रहना। ऐसा नहीं विम्जिकल, कभी रेगुलर तो कभी 15 दिन नहीं आए, तो कभी 25 दिन नहीं आए, तो फिर अचानक लगा चलो जाके आते, ऐसे से ज्ञान चक्षु थोड़ी खुलेगा, वो तो मनोरंजन हो जाएगा केवल, नहीं? जैसे सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा देखने के बाद जब सिनेमा थिएटर के बाहर आते हैं तो क्या लाभ होता है? होता है कुछ लाभ, कोई रियलाइजेशन, अनुभूति, साक्षात्कार? कुछ नहीं होता है। सिनेमा घर के बाहर जाके खड़े रहे तो पता चलता है ऐसे लोगों के स्ट्रेसफुल फेस, एक जैसे लगा कि 3 घंटा इसको अंदर किसी ने बहुत मारा, क्योंकि बाहर जब चेहरा आते वक्त देखते तो एकदम क्रश हुआ है पूरा ऐसे, और धन भी गया और इस मनुष्य जीवन का 3 घंटा भी उसमें व्यस्त व्यर्थ गया। क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से सत्संग को ऐसे नहीं समझना चाहिए, जाके आते हैं मनोरंजन के हिसाब से और बाद में अरे क्या यार 1 घंटा एकदम सर भारी पड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो हमको दिव्यत्व, भगवान का दिव्यत्व समझ में नहीं आएगा, बल्कि हमारा अज्ञान बढ़ते जाएगा, हमारा आलस्य बढ़ते जाएगा, हमारे ऊपर माया रोज आक्रमण करते जाएगी। और ये माया या ये प्रकृति बड़ी क्रूर है, ये मत भूलिए, प्रकृति बड़ी क्रूर है। किसी से नहीं डरती है ये। संसार का कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति इसको डरा नहीं सकता। बड़ी क्रूर हो जाती है कभी कभी। यदि ये किसी से डरती है तो वो है भगवान, उनके पीछे रहती है, वो सामने आती ही नहीं। भगवान के हमेशा पीछे रहती है माया। हाँ ऐसा कुछ ना कुछ आते रहेगा, सैंडी फैंडी सब। हमारे इंडिया में तो भी कम से कम सुनामी, सुनामी कहाँ आया था? श्रीलंका। इंडिया में आया था ना, इंडिया में आया था, तमिलनाडु में आया था। तो सुनामी इंडिया में, देखो सुनामी आया वहां। कम से कम सुनामी, सु मतलब बहुत अच्छा शुभ, नामी मतलब नाम, सुनाम मतलब हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जापान में भी, आपको इसके पहले मैंने बताया था, जापान में भी स्टॉर्म आया था ऐसे, लाखों का नुकसान, मतलब बहुत नुकसान हुआ। तो कोई भक्त ने कहा कि एक्चुअली वहां इसलिए आया, वो जापान नहीं होता है वहां पे, जापान न नो जापान सब भक्तों की व्याख्या है। तो इस प्रकार से हम क्या कह रहे थे कि जो आत्मा है, कोई भी शरीर प्राप्त करता है, कोई भी मशीन प्राप्त करता है, कोई भी इंजन प्राप्त करता है, उसको चला लेता है, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं जाती। ये भी आश्चर्य करने वाली बात है। और आप सोचिए, हमको सबसे बड़ी बात, भगवान कहते हैं यो मे वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्वते तत्व से जानते हैं, कश्चिन नाम वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं कश्चिन नाम वेत्ति तत्वतः, वो कहते ऐसे लोग विरले ही है जो मुझे तत्व से जानते हैं। आप देखिए डिफरेंस क्या है। पहले अभी तक जो बात हुई है वो बात हुई है कि भगवान के अंश को जानना, मतलब आत्मा को जानना, और उस आत्मा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। वो एक ही रास्ता है, क्योंकि वो जो आत्मा है वो उन्हीं भगवान का अंश है। और भगवान इधर कह रहे हैं कि जो मुझे जानते हैं वो बहुत विरले होते हैं। और भगवत गीता में आने को जगह आगे कहते हैं भगवान कि जो मुझे तत्वता जानते हैं उनको मैं प्राप्त हो जाता हूं, वो मेरे प्रेमी होते हैं, मैं उनका प्रेमी होता हूं, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो भगवान को तत्वता जानना मतलब पहले अपने आत्मा को समझना, आत्मा को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, और वो प्राप्त होगा तीसरी आंख खोलने से, है कि नहीं? कोई डिफिकल्टी है क्या? तो खोलिए तीसरी आंख फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से तीसरी आंख खोलिए, इस बात को ध्यान में रखना है कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तीसरी आंख खोलने के लिए। हैं? केवल दो आंखें खुली रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। हैं? दूसरी बात, भगवान इस श्लोक में दूसरी लाइन क्या कहते हैं, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, मतलब कोई विरला ही जीवात्मा का आश्चर्य के समान वर्णन करता है। मतलब यहां भगवान कह रहे कि ऐसे लोग बहुत कम है, बहुत विरले है, बहुत कम है जो इस आत्मा का वर्णन आश्चर्य से करता है, आश्चर्यचकित होकर इस आत्मा का वर्णन करता है। मतलब पहले स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या क्या दिव्य बात है, हा? क्या भगवान का अंश है, क्या दिव्य स्तर पे है। इस प्रकार से जो व्यक्ति आत्मा का वर्णन करता है आश्चर्यचकित होके, वो लोग भी बहुत विरले हैं, बहुत कम है। ऐसे तो आत्मा का वर्णन तो करोड़ों लोग करते हैं, है कि नहीं? हजारों लोग करते हैं आत्मा का वर्णन प्रभु जी, है कि नहीं? आपने सुना है कहीं कहीं टीवी चैनलों पे कोई बोलते, हाँ आपके चार जनरेशन पहले के व्यक्ति को मैं अभी आपके सामने उनका आत्मा हाजिर कर देता हूं, खड़ा कर देता हूं आपके सामने, सब कुछ बोल देगा आपको। अच्छा, है ऐसे लोग जो आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन आश्चर्यचकित होते ही नहीं। मतलब आश्चर्यचकित होते नहीं, इसका अर्थ क्या है? आत्मा के दिव्यत्व को नहीं समझते हैं। वर्णन तो एकदम बहुत जोरदार करेंगे, आप उनके सामने एक घंटे का प्रवचन सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतना जोरदार वर्णन करेंगे उसके डायमेंशंस, 3 dimensions, 4 dimensions, 7 dimensions, 64 dimensions, 108 dimensions, क्या कहते हैं उसको, UFO, unidentified flying objects। आत्मा किधर से आता है? वो उधर से, ऐसे वो हायर डायमेंशंस, लोअर डायमेंशंस, मिडल डायमेंशंस, सो मेनी डायमेंशंस, ऐसा बड़ा बताएंगे एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं होंगे। क्यों आश्चर्यचकित नहीं होंगे? क्योंकि अनुभव ही नहीं है, नहीं अनुभव ही नहीं है ना। हमने क्या बताया, भगवान ने सबसे पहले क्या बताया है, आत्मा को देखना नहीं होता है, आत्मा का अनुभव करना होता है। यू हैव टू एक्सपीरियंस द सोल, आत्मा का अनुभव करना है। तो इन लोगों ने अनुभव तो किया नहीं, केवल क्या है बताते जा रहे हैं, क्या है क्या है? तो यहां इसलिए कहा जाता है कि आज कोई विरला ही जीवात्मा आश्चर्यवद वदती तथैव चान्यम। इसलिए इस आश्चर्यकारक वर्णन वही व्यक्ति करेगा जो इस आत्मा को समझेगा, अनुभव करेगा। जो समझेगा ही नहीं वो क्या वर्णन करेगा प्रभु जी? नहीं, आत्मा को समझे ही नहीं तो क्या वर्णन करें? आपका कंप्यूटर का काम है, आपको कंप्यूटर खोलना ही आता नहीं तो कंप्यूटर को समझाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे कंप्यूटर कैसा होता है? जो भी है, आपको जिसका कुछ पता ही नहीं, हमको जिस बात को हम समझे ही नहीं उस बात का वर्णन क्या करेंगे? हाँ, कर ही नहीं सकते। तो जो बात, मतलब आत्मा को जो समझा है वही उसका वर्णन कर सकता है, ये भगवान कहना चाहते हैं। यहां पे जो भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक बातें वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मा को समझा है, जो समझा नहीं वो बोगस है, उसकी बातों में कोई विशेषता या दिव्यता नहीं है। लेकिन केवल वाणी से इसका वर्णन होता है क्या? कोई व्यक्ति जब समझेगा तब आत्मा का वर्णन करेगा ऐसा भगवान कहते हैं, पर कौन व्यक्ति कब समझेगा अब ये दूसरा प्रश्न आएगा ना। जो समझेगा वही वर्णन करेगा, अब कौन समझेगा? हाँ, प्रभुपाद जी ने लिखा है तो भी नहीं समझेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सब कुछ तात्पर्य में बहुत शांति से तात्पर्य पड़ी। जो व्यक्ति प्रमाणित गुरु के आश्रय में चला जाता है, गुरु कृपा जिसको प्राप्त होती है, वैष्णव कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा जिसको प्राप्त होती है, उसी को आत्मा के बारे में, आत्मा को वही समझ पाएगा, वही समझ सकता है। कोई भी एक दिन नींद में से उठा और खड़ा हो, मैं भगवान हूं, अब आओ मैं आत्मा के बारे में बताता हूं। अभी तक तो सारे कार्यकलाप किए, कॉलेज में गया, उधर सब कुछ, सिनेमा देखे बहुत सारे, हाँ सारे प्रकार के डिफॉल्ट जो है सब फॉल्ट सब फॉलो किए, हाँ और अब अचानक एक दिन उठ के उसको पता चला कि वो तो भगवान है, उठ के खड़ा हो गया, आई एम द लॉर्ड। प्रभुपाद जी, वो एक भक्त है गौरांग प्रभु, उन्होंने एक बार हमको 5-7-8 साल पहले एक बात बताई थी, उन्होंने उस बात को एक प्रवचन में भी कहा है। बोले ऐसे भगवानों की स्टूल टेस्ट करनी चाहिए, उन लोगों को यदि डिसेंट्री लग गई तो उनको एक रूम में बंद करके रख देना चाहिए, उनको दवाई नहीं देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए आप तो भगवान हो, अपनी डिसेंट्री बंद करो। यदि कर सकते हैं तो भगवान है, और नहीं कर सकते हैं तो भगवान नहीं है। तो यदि कलयुग में कोई कहता है कि मैं भगवान हूं तो उसकी पहली क्या करनी चाहिए? स्टूल टेस्ट करनी चाहिए। अरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से अचानक कोई आके उठ के खड़ा हो गया और बोले कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है और मैं भगवान हूँ और आत्मा और परमात्मा एक ही है और मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, भगवान का बाजार भर गया, सब भगवान है। तो यहां यह बात नहीं हो रही, कह रहे हैं समझेगा वही जो प्रमाणित प्रामाणिक गुरु के आश्रय में आके परंपरा के परंपरा का आश्रय लेके शुद्ध भक्तों का आश्रय प्राप्त करके ज्ञान उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, उनसे कृपा प्राप्त करता है, उसी को वही आत्मा को समझ सकता है। इसलिए इस्कॉन टीवी इस्कॉन आईटीवी सब जानते हैं, इस्कॉन टीवी पे ये बहुत आसान कर दी ये सब बात। कैसे आसान कर दी? उन्होंने उस प्रोग्राम को नाम दिया क्या? आत्मा। आत्मा को समझना है तो इस्कॉन टीवी देखो। हरे कृष्ण। अभी शुरू हो गया मुझे पता नहीं, बहुत साल पहले तो चला था, चालू है? अच्छा मुझे आइडिया नहीं, बहुत कई साल पहले मैंने देखा था चैनल आत्मा, उसका सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे कुछ तो 4:30-5 बजे कुछ तो बिता है आत्मा। और फिर बड़े शुद्ध प्रमाणित साधु संत उस पे आके प्रवचन करते थे। तो उनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, आसान कर दिया है कलयुग में और केबल टीवी ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जीवात्मा का वर्णन करते करते कभी नहीं थकते थे, उनको कभी थकावट नहीं होती थी, कंटिन्यूअस जीवात्मा के बारे में बोलते थे, कंटिन्यू, कभी 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 भी नहीं थकते थे। वो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण तो आश्चर्यों के भंडार है, है कि नहीं? भगवान स्वयं तो आश्चर्य के भंडार है, उनके पास वो सारा जो कुछ भी वो करते वो आश्चर्य है। भगवान का प्रत्येक कार्यकलाप, वो सोते हैं तो आश्चर्य, जगते हैं तो आश्चर्य, खाते हैं तो आश्चर्य की बात है, विशेष रूप से खाते हैं, चलते हैं तो आश्चर्य की बात है, खड़े रहते तो त्रिभंग ललितम है, जो कुछ करते हैं वो आश्चर्य। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण तो आश्चर्य के भंडार है। तो श्री कृष्ण तो आश्चर्य के भंडार है, परंतु व्यक्ति जब तक उनके अंश के रूप में जीवात्मा को आश्चर्य नहीं मानता या नहीं समझता, तब तक वह व्यक्ति भगवान कृष्ण के आश्चर्य को नहीं समझ सकता। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण तो आश्चर्य के भंडार है, बराबर है, वास्तव में है, परंतु यही आश्चर्य के जो भंडार है भगवान कृष्ण, उनका जो अंश है वो यह आत्मा है। इस आत्मा के आश्चर्यों को जो व्यक्ति नहीं समझ सकता, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आश्चर्य को कदापि नहीं समझेगा। बताओ, प्रभुपाद जी कहते हैं। और हमको तो क्या करना है? समझना है कि नहीं? भगवान कृष्ण के आश्चर्य को समझना है ना, है ना? दशम स्कंद का भागवत कथा चलता है तो कितना रस आता है उसमें, है? उठने की इच्छा नहीं होती, बोलते रहो उठने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आश्चर्यों से भरा हुआ है, पूरे आश्चर्य ही आश्चर्य है। इस मन ने इस बुद्धि ने कभी सोचा ही नहीं है ऐसा दिव्यत्व के बारे में। मन और बुद्धि को तो भौतिक सांसारिक बातों की आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए भगवान के आश्चर्यों को समझना चाहते हो तो आत्मा के आश्चर्यों को समझना पड़ेगा, है कि नहीं? प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहले जब प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों को लेके भारत में पहली बार, पूरे संसार में बहुत प्रचार किया उधर विदेशों में, और कुछ शिष्यों को लेके वो भारत में आए। तब तक तो भारत में बहुत प्रचार हो गया था, किस बात का, कि अरे कोई भारतीय साधु है प्रभुपाद जी। उन्होंने तो पूरे विदेशियों को सात समुंदर पार अपने गीता का प्रचार प्रसार किया, गीता भागवत का। हाँ, अरे अमेरिका में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। हाँ, पूरे भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियंस आश्चर्यचकित हो गए। भक्तों के कार्यकलापों से भी आश्चर्यचकित होना एक सौभाग्य का लक्षण है। भक्त जो कार्य करते हैं उनके कार्यों से यदि हम आश्चर्यचकित होते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर कुछ शुद्धता है, हैं? कुछ भक्ति है, कुछ तो भी कृष्ण की कृपा है। और यदि भक्तों के कार्यकलाप से हम आश्चर्यचकित न होके जेलस को क्या कहते हैं हिंदी, ईर्ष्या, भक्तों के कार्यकलापों के प्रति जब हमारे अंदर आश्चर्य न हो के ईर्ष्या होती है तो ना तो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, ना हमारी कुछ भक्ति है, ना हमारे अंदर शुद्धता है, ना भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। ये समझ जाना चाहिए, तभी तुरंत भक्तों के कार्यकलापों के प्रति हमेशा आश्चर्यचकित रहना चाहिए कि क्या सेवा कर रहे हैं, क्या भक्त है। ये नहीं कि ये अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो मैं तो वैसा करूंगा, मेरे से थोड़ी कोई बड़ा है, मैं सबसे बड़ा हूं, है? तब समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है, हमको कोई ज्ञान, जीरो बिग जीरो, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी के इस कार्य से भले ही वो लोग भक्त नहीं थे या कुछ उनको भक्ति से लेन देन नहीं था, लेकिन आश्चर्यचकित हो गए। तो जैसे ही प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को लेके आ गए दिल्ली बॉम्बे इन सारे शहरों में, ये सारे बड़े बड़े लोग एकत्रित हो गए, उनका बहुत बड़ा स्वागत करने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां, क्रॉस मैदान फेस्टिवल और ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल हुए, और सब बड़े साधु संत पॉलिटिशियन धार्मिक लोग सब ये सोचने लगे कि ये इतने बड़े महान संत हैं, पूरी दुनिया पूरे विश्व में भ्रमण किए हैं, जो आज तक कोई नहीं कर सका वो प्रभुपाद जी ने किया। आज तक इसके पहले कोई भी भारतीय संत ने इतना बड़ा कार्य नहीं किया है। विवेकानंद जी ने भी किया है, वो भी गए, लेकिन उन्होंने भारत में वहां विदेशों में जाके हिंदू धर्म की व्याख्या बता दी, हिंदू धर्म क्या है बता दिया, लेकिन प्रचार प्रसार कहां हुआ, प्रसार नहीं हुआ। परंतु प्रभुपाद महाराज ने वहां जाके पहली बार उन लोगों को किसी भारतीय व्यक्ति ने कुछ दिया, देने के लिए गए पहली बार प्रभुपाद। उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि पहली बार भारत से कोई हमको देने के लिए आया है, नहीं तो भारतीयों को तो हमेशा लेने की ही आदत है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जाता है तो हजारों बिलियन ट्रिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन करके आता है उधर से, लेके ही आता है, उधर दे तो नहीं सकता है। परंतु पहली बार प्रभुपाद जी ने उन लोगों के ऊपर उनको लोन देके कर्जा देके आए, ऐसा कर्जा दे दिए कि उनके कितने भी जनरेशन कितने भी पुश्ते निकल जाए वो फेर ही नहीं सकते, इतना कर्जा उनको दे दिया प्रभुपाद जी ने कृपा का। तो जब प्रभुपाद जी आए तो सब सोचने लगे कि इतने बड़े महान संत हैं, ये कुछ विशेष बात बोलेंगे, अभी ये कुछ एकदम टॉप सीक्रेट ऐसा कुछ बोलेंगे, जादू, बहुत बड़ी विशेष बात बोलेंगे। सब लोग उनके इर्द गिर्द भीड़ करने लग गए, काफी भीड़ एकत्रित हो गई और प्रभुपाद जी बोलना शुरू किए। और प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी उस समय बोला उसका पूरा बार बार एक ही सार निकलता था, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सोचो, इसको समझो पूरी तरह से प्रभुपाद जी। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने उस समय कहा था, जब व्यक्ति अपने को शरीर समझता है, प्रभुपाद जी ने क्यों वहां पे आत्मा के बारे में चर्चा की, प्रभुपाद जी क्यों बार बार आत्मा के आश्चर्य के बारे में चर्चा करते हैं, क्यों? तो क्यों, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी की व्याख्या है, जब व्यक्ति अपने को शरीर समझता है तो उसके जीवन की दिशा होती है इंद्रिय तृप्ति। क्या होती है? जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को केवल शरीर ही समझता है तो उसके जीवन की दिशा क्या होती है? उसके जीवन की दिशा केवल और केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति, भोग, जो कि कुत्ता और बिल्ली और सारे जानवर करते हैं, है कि नहीं? बस वही इंसान करता है, क्योंकि वो समझता है मैं शरीर हूं। जब व्यक्ति अपने को आत्मा समझता है तो उसकी उसके जीवन की दिशा श्री कृष्ण के शरणागति की ओर जाती है। वो भगवान को शरणागत होने का प्रयास करता है। इसलिए प्रभुपाद जी उस समय कहे, क्योंकि इन लोगों को यदि मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलो, अपने जीवन की दिशा बदलो मतलब क्या करो? जीवन की दिशा बदलो मतलब अपने आप को शरीर मत समझो, आत्मा समझो। और जब प्रभुपाद जी इसलिए वहां कहे और इस बात को कहे कि आत्मा समझो, क्योंकि यदि ये लोग आत्मा क्या है समझेंगे तो भगवान कृष्ण को शरणागत होंगे। तो प्रभुपाद जी ने एक और बात कही है, वो कौन सी? यदि भगवान को शरणागत होना है तो आत्मा, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, आत्मा को समझना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से अल्टीमेटली बात यही है कि आत्मा के आश्चर्य को जानो, आत्मा के आत्मा को समझो, आत्मा की आत्मा का अनुभव करो। फिर तीसरी बात इसमें कही गई है, आश्चर्यवश्चैन मन्यः शृणोति ही। कोई विरला ही जीवात्मा के विषय में आश्चर्य से सुनता है। इस बात पे तो बहुत बार चर्चा हुई है, सुनना। नवदा भक्ति में सर्वप्रथम क्या है? सुनना। नवदा भक्ति में उसने यदि पहला स्थान प्राप्त किया है तो हम सोच सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण बात है, नहीं? साधारण बात नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्व की बात है, नहीं? नवदा भक्ति की शुरुआत ही श्रवणम, सुनने से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो तो आगे सब बात की बात है, श्रवण ही नहीं है तो बाकी सब जीरो है। पहला स्टेज नहीं है, पहले ही माले पे बिन नहीं चढ़े है तो पांचवे माले पे कैसे चढ़ेंगे, नौवे माले पे कैसे चढ़ेंगे? उसके लिए पहला माला क्रॉस ही करना पड़े, पहला ही माला नहीं चढ़ पा रहे, फर्स्ट फ्लोर ही नहीं चढ़ पा रहे है। फर्स्ट फ्लोर है श्रवणम। यहाँ पे इसका अर्थ यह है, भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध अच्छा शिष्य बनकर उपदेश ग्रहण करो, एक स्टूडेंट की तरह ज्ञान को प्राप्त करो। कोई अहम भाव से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोई अहम भाव से ज्ञान प्राप्त मत कीजिए, शुद्ध शिष्य बनके स्टूडेंट बनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। कौन से ज्ञान को? आत्मज्ञान को। क्यों ये बात शिष्य बनकर विधिवत श्रवण करना चाहिए? क्योंकि यह बात कोई साधारण नहीं है। हमको सांसारिक बातें समझने का सुनने का तो बहुत आदत है, 24 आवर्स भी सुनाते रहा कोई हमको तो हम सुनते रहेंगे। ऐसा कभी बीच में ऐसा कभी लगा आपको कोई सांसारिक बातें सुनता गया और आपको ऐसा, अरे नहीं नहीं बस बंद कर चुप? हाँ, सब आगे 9 फ्लोर ऑटोमेटिक चढ़ेंगे। श्रवण वही बोलते हैं, क्योंकि 24 आवर श्रवण यही होता है। क्या होता है? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ये नवदा भक्ति है अपनी। संसार के प्रति नवदा भक्ति, सबसे पहले टेलीविजन, बाद में न्यूज़पेपर, बाद में चाय, बाद में प्रजल्प, बाद में अपराध, ऐसे अनेक है। ये नवदा भक्ति है हमारी संसार के प्रति। हाँ, इसमें तो एकदम फास्ट प्रोग्रेस होती है, इमीडिएट सुनते हैं, 24 आवर्स सुनते हैं, जब चाहे तब सुनते हैं, नींद में भी सुनने का, सपने देखते हैं, सपनों में सुनते हैं, भौतिक सब। तो सुनना बहुत महत्व की बात है। भौतिक विषय की जितनी बातें हैं उनमें से यह बात बहुत विलक्षण है। कौन सी? सुनना। क्योंकि यह यदि आध्यात्मिक दिव्यता के बारे में यदि हम सुनना शुरू करेंगे तो अपने आप हम शुद्ध हो जाएंगे। जो ज्यादा सुनता है वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, ज्यादा बोलता है वो कम ज्ञान प्राप्त करता है, ज्यादा सुनता है वो। इसलिए आप सब ज्ञानी हैं और मैं एकदम अज्ञानी हूं क्योंकि बोलते ही जा रहा हूं। इसलिए जो बहुत ज्यादा बोलता है वो अज्ञानी है और जो ज्यादा सुनता है वो ज्ञानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सुनने का प्रयास करना चाहिए। कहीं पे भी जाते हैं तो पहले सुनना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए, पर पहले सुनना चाहिए। अब अभी तक इन तीन विषयों में, तीन बातों में, तीन लाइन में भगवान ने तीन प्रकार के विरले लोग, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तीन प्रकार के विरले लोग बताए हैं। एक है पश्यति, वदति और शुणोति। ये तीन प्रकार के लोग विरले हैं। पश्यति, वदति, शुणोति। पश्यति मतलब क्या? जो देखते हैं, मतलब समझते हैं, जो समझते हैं। किसको? आत्मा को, आत्मा के आश्चर्य को, आश्चर्यचकित होके जो समझते हैं। और आत्मा जो आश्चर्यचकित कर देता है उस आश्चर्य को समझते हैं। पश्यति, जो आत्मा के आश्चर्य को समझता है। दूसरा क्या है? वदति। वदति मतलब जो वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सा विरले लोग है जो आत्मा के आश्चर्य का वर्णन कर सकते हैं। और वर्णन कौन कर सकता है? केवल वाणी से वर्णन होगा क्या? पटर पटर नहीं, जिसने अनुभव किया। अनुभव कैसे किया है? शुद्ध भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु की कृपा से। तो वो व्यक्ति ही क्या कर सकता है? वदति, वर्णन कर सकता है। और फिर महत्व का तीसरा क्या है? शुणोति, जो श्रवण करता है या जो सीखता है, लर्न, जो हियर्स और जो सुनता है या जो सीखता है। तो ये तीन प्रकार के लोग बड़े विरले हैं। दुर्योधन ने ये तीनों बातें की है? दुर्योधन ने भगवान का विराट रूप देखा है कि नहीं? फिर भगवान के बारे में कुछ बोला, वर्णन भी किया, और भगवान ने जो कुछ कहा उसका श्रवण भी किया। लेकिन गलती कहां हुई? उसने देखा भगवान दिव्य विराट रूप दिखा रहे हैं, लेकिन वो विराट रूप दिखाने से, वो देखने से वो भयभीत हो गया और आग बंद कर। उसके साथ जितने उसके भाई बहन थे, सब मित्र या रिश्तेदार, नाते संबंधी, सब उन्होंने क्या कर दिया? तुरंत आंख बंद कर दिया। और जब आंख बंद कर दिया और विराट रूप भगवान का, फिर भगवान अपने रूप में आए, तब भगवान का उसने वर्णन किया। बोला क्या? ये ग्वाल वाला है, पकड़ो इसको। ऐसे के ये साधारण ग्वाल हमको क्या सिखाएगा? हम राजा है और ये तो एक साधारण गाय चराने, गौवा चराने वाला है, पकड़ो इसको। इस प्रकार का भगवान के बारे में वाणी का उपयोग किया और सुना, श्रवण किया, लेकिन श्रवण का कुछ फल नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? इसमें मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है समझना। वो समझा ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। उसके जितने कार्यकलाप थे वो क्या है, वो खेला द्युत क्रीड़ा, खेला उसने, युद्ध किया, उसने जो कुछ भी किया वो किसके लिए किया, इंद्रिय तृप्ति के लिए किया। आत्मज्ञान तो कुछ सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं आता है आत्मज्ञान का। सब कुछ उसने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया। वो समझता था मैं इंद्रिय हूं, मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं। वो क्योंकि आत्मा को कभी समझा नहीं, इसलिए वो ना तो पश्यति समझा, ना वदति समझा, ना सुनोति समझा, ना तो वो समझ सका भगवान को, ना तो भगवान का वर्णन कर सका और ना ही सुन सका। क्यों? क्योंकि बेसिक बात क्या है, मुख्य बात, वो यही बात नहीं समझा, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। हम यदि ये मुख्य बात नहीं समझे, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं भी आप ही में हूं। हम यदि ये सोचे थोड़ी देर के लिए कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं शरीर हूं बस, और शरीर इंद्रिय तृप्ति में लगा हूं, सारे कार्यकलाप इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूं, और अचानक मेरे सामने भगवान कृष्ण आ गए, क्या करूंगा मैं? सबसे पहले जो दुर्योधन ने किया, क्या करूंगा? नहीं देखना, देखा ही नहीं जा सकता, भयभीत हो जाऊंगा। यदि यह बात हम नहीं समझे, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, इस बात को हम नहीं समझे, तो हम चाहे कितने भी सत्संग में जाए, पूरा भागवत भगवत गीता उगाल के पी जाए, कुछ भी कर ले, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला नहीं है। कथाएं बड़ी अच्छी अच्छी लगेगी, अध्यात्म ज्ञान एजुकेशन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बदलाव ही नहीं होगा, क्योंकि शरीर हूं आत्मा नहीं हूं। बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन स्तर अभी वही है। तो भगवान भी साक्षात सामने आ जाए तो हमारे दुर्योधन जैसे हाल हो जाएंगे, आंख बंद कर देंगे हम लोग। इसलिए पहली मुख्य बात, बार बार रोज एक माला जप कीजिए, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के पहले एक माला जप ये कीजिए, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल। तब अचानक भगवान सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा आश्चर्य लगेगा, और तुरंत भगवान के साथ का संबंध हमको स्मरण होगा, और भगवान के चरणों में तुरंत समर्पित हो जाएंगे, और भगवान भी हमारी सेवा स्वीकार करेंगे, और बड़ा रसास्वादन होगा, है कि नहीं, रस का आस्वादन होगा। पर उसके लिए ये पहली स्टेप क्रॉस करना है, इसलिए भगवान इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह श्लोक 29 और 30, ये जो दोनों श्लोक है, यह आत्मा इस विषय का अंतिम श्लोक है। भगवान जो बताते आ रहे हैं आत्मा, 11वें श्लोक से लेकर तो 30, कितने श्लोक है, 19 श्लोक 20 श्लोक लगभग, जिसमें भगवान बता रहे हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी होनी नहीं चाहिए, समय बहुत कम है। एवरी टाइम मुझे 9:15 याद आता है कि दूसरा श्लोक लेना है। एनीवे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चौथी बात क्या है, हमको ऐसा नहीं होना है, दुर्योधन के जैसा हमको नहीं होना है, हमको रोज ध्यान में रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। चौथी बात क्या है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते, जैसे कि श्रुत्वापेनम वेदन चैव कश्चित, मतलब कि सुनकर भी समझ नहीं पाते, बताओ क्या करें, सुन तो लेते पर समझ में ही नहीं आता है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में, देखो एक मस्तिष्क में सूक्ष्म तंतु होते हैं, वायर सूक्ष्म तंतु होते हैं, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में के सूक्ष्म तंतु, मतलब ब्रेन में के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं ना, वो सूक्ष्म तंतु नष्ट जिसके हो गए हैं, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता। दैट इज व्हाट इज साइंस। मस्तिष्क में के ब्रेन में के जो सूक्ष्म तंतु है जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सुनकर भी उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी कभी बोलते क्या बोलते हैं, आलू बटाटे भर गए क्या दिमाग में बोलते मतलब सारे सूक्ष्म तंतु डेड हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, इसलिए सुनने पर भी समझ में नहीं आता है, अच्छा तो लगता है। प्रभु जी क्या अच्छा प्रवचन हुआ, बड़ा आनंद आया। प्रभु जी क्या हुआ, क्या बताया वो नहीं पता, क्या बताया वो हमको पता नहीं है, पर बहुत अच्छा बोला, बड़ा अच्छा लगा। इसका अर्थ यह कि मस्तिष्क में जो होना चाहिए वो बात नहीं है, सूक्ष्म तंतु जो है नष्ट हो गए हैं, इस विषय में सुनकर भी इसलिए समझ में नहीं आता है। प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं सूक्ष्म तंतु नष्ट क्यों हो जाते हैं, सूक्ष्म तंतु नष्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग व्यभिचार, मांसाहार, नशा, जुगाड़ इसमें लगे रहते हैं। इन चारों चीजों में लगे रहने से मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु भ्रष्ट और नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए सुनकर भी समझ में नहीं आता है। इसमें भगवान भी कह रहे हैं ना, कोई कोई लोग ऐसे है सुनकर भी उनको समझ में नहीं आता है, वो फोर्थ टाइप के लोग है, वो इसलिए समझ में नहीं आता है कि दिन रात तो इसी में डूबे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पाप कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए वो जो है सूक्ष्म तंतु नष्ट हो जाते हैं, और इसी के कारण वो जीवात्मा को समझ नहीं सकते। फिर चाहे वो वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, आप सोचें कोई साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, वो भी आत्मा को नहीं समझ सकता। क्यों क्यों नहीं समझ सकता? रिसर्च साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका, लंदन, जापान, इसका सच ए रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वेल नोन विद्वान सो कॉल्ड, उनके भी सूक्ष्म तंतु भ्रष्ट नष्ट है मस्तिष्क के, क्योंकि वो जीवात्मा को समझ नहीं सकते, और इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि एक नंबर के व्यभिचारी, एक नंबर के मांसाहारी, एक नंबर के नशेखोर, एक नंबर के जुआरी, ऐसे लोग कैसे पता कर पाएंगे आत्मा क्या है। वो सारे दुर्योधन के अवतार हैं, ये सारे के सारे दुर्योधन का एक्सपांशन है, भले वो साइंटिस्ट क्यों ना हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भौतिक संसार में बहुत होशियार है तो वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं, वो दुर्योधन भी हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अब सुनने का तो ऐसा है प्रभु जी की, एक बार राधा गोविंद महाराज प्रवचन में बोले कि सुनने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक श्रोता और एक सोता एक होते जो श्रोता है जो सुनते हैं, और दूसरे होते हैं वो सोते रहते हैं तो सुनने वाले ऐसे भी होते हैं, सुनने वाले कभी कभी एक दूसरे का देख के सभा में आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, भाई पड़ोसी जा रहा है तो उसके साथ कंपटीशन करना है तो हमको भी साथ में जाके बैठने का है और क्या करने का, इसलिए आते हैं सुनते हैं। कुछ लोग आते हैं मनोरंजन के लिए, घर पे समय नहीं जाता है, इधर जाके बैठ जाएंगे चार छह लोग, कोई एक आदमी बड़बड़ करता रहेगा, 10-20 लोग सुनते रहेंगे, अपन भी पीछे जाके बैठे रहे, समय टाइम पास के लिए कुछ लोग आते हैं। कुछ लोग वास्तव में सुनने के लिए आते हैं, ज्यादातर कुछ लोग वास्तव में सुनते हैं, कुछ लोग इधर से सुनते इधर से छोड़ देते हैं तो सुनने वालों के बहुत प्रकार है, ये भी एक डिफॉल्ट है सुनने का, सुनने में भी ये बहुत सारे डिफॉल्ट फॉल्ट है, किस प्रकार से सुनना है हमको, इधर से लेके इधर से छोड़ना है कि बस देखा देखी करके करना है इसलिए सुनना है, या टाइम पास के लिए सुनना है, तो ये हमको अपना डिसाइड करना है कि इसलिए सुनना है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है जो प्रॉपरली सुनते नहीं है, आश्चर्यचकित होके जो सुनते नहीं। सुनना कैसा है? ऑफुल, अमेजिंग,
क्या अमेजिंग सत्संग हो रहा है, क्या आश्चर्यचकित बातें बताई जा रही, चर्चा हो रही है आत्मा के बारे में, आश्चर्यचकित होना चाहिए सुनकर। तो इसलिए सुनना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग सब कुछ कर कर फिर भी समझ नहीं पाते। तो जैसा कि कहा है कि कुछ पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं और कुछ मांसाहार नशा ये चार अवगुण हैं, इनका भी प्रभाव रहता है, आलस्य भी रहता है, और इसलिए सारे सूक्ष्म जंतु तंतु नष्ट हुए चुके होते हैं। इसलिए उनके सामने मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तो ऐसे लोग बहुत बार सत्संग में आके बैठेंगे, बस समझेगा कुछ नहीं, दिन रात बताओ तो भी कुछ समझेगा नहीं। तो ऐसे कर्म उनके इस प्रकार के होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें? तो ऐसे व्यक्ति भक्तों की सेवा करें और फिर भी बैठे रहे सत्संग में और सेवा करते रहे। सेवा करते 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 व्यक्ति सुनने की पात्रता प्राप्त करेगा। वो वृंदावन में गौशाला है, केयर फॉर काउज। वो गौशाला में एक ब्रजवासी एक छोटा लड़का 14-15 साल का, उसके पिताजी उसको लेके आए और बोले इसको इधर ही रख लो। पहले तो वो लड़का काम करता था खेती में, इधर तो कुछ धन कमाता था तो अपने पिता को देता था कुछ धन। पर अब अचानक एक दिन उस बच्चे को कुछ पैरालिटिक अटैक आ गया, यंग लड़का, और पैरालिटिक अटैक आने से ना तो बोल सकते ना प्रॉपरली सुन सकते ना चल सकते कुछ भी। तो उनके पिताजी उनको गौशाला में ला के रख दिए, बोले जाओ तुम इधर ही रहो। तो गौशाला के जो प्रभु जी है उन्होंने उसको रखा, बोले ठीक है तुम कुछ भी नहीं करना है, तुमको रोज जो है गोमूत्र यदि पॉसिबल हो तो, नहीं तो गोबर एकत्रित करना है जो एक जगह पड़ा रहता है उसको एकत्रित करना है और वो ट्रॉली में दूसरी जगह डालना है। तो इससे तुम्हारी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी हो जाएगी, धीरे धीरे जितना हो सके वैसे जितना ले सके फिजियोथेरेपी हो जाएगी नेचुरल। बोले ठीक है। वो लड़का बड़ा प्रेम से शुद्ध भाव से वो सेवा करता रहा, रोज गोबर उठाना डालना लाना एकदम शुद्ध भाव से। 6 महीने के बाद उसका पैर काम करने लग गया, वो पैर से चलने लगा। तो जैसे ही पैर ठीक हो गया, पैर से चलने लगा, तो उसका उत्साह बढ़ गया। वो एकदम उत्साह से और आश्चर्यचकित होकर और सेवा करने लगा गोमाता की रेगुलर। और उसके 3-4 महीने बाद उसके हाथ और पैर एकदम ठीक हो गए। फिर वो प्रभु जी ने उनको बताया कि अभी तुम्हारे हाथ और पैर ठीक हुए, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा है, अब तुमको गोबर सेवा तो ठीक है करो, लेकिन गौ माताओं को पानी जैसा उनको छोड़ना होता है पानी पीने के लिए, तो सबको छोड़ने की तुम्हारी सेवा, लेकिन तुम्हारी गोबर उठाने की सेवा नहीं है, छोड़ने की सेवा है, लेकिन सबसे बड़ी तुम्हारी सेवा है अभी 24 आवर्स तुम हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भले ही तुमको नहीं बोलता है। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा। तो जप करने से उसका मुख सीधा हो गया। अभी भी वो केयर फॉर काउज गौशाला में वो लड़का है। वो अभी जब भी आप वृंदावन जाएंगे आप जाके पूछ सकते हैं वहां पे। तो सेवा करने से हमको योग्यता प्राप्त होती है। मान लो कितना भी सुनते और समझ में ही नहीं आता है तो करना क्या चाहिए? सेवा में लग जाना चाहिए। और सेवा में लगने से अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी एक बार कहे, यदि चावल का ढेर लगा हुआ है, बहुत बड़ा पूरा माउंटेन है चावल का ढेर पड़ा हुआ, और आपको पूछा गया कि ये चावल का क्वालिटी जरा परखो, इसको टेस्ट करो, चेक करो इसको, इस चावल को चेक करके हमको बताओ कि ये कौन सा चावल है, इसकी क्वालिटीज क्या है। यदि आपको चावल की क्वालिटीज जानना है तो आप क्या करोगे? बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है एकदम पूरा ग्राउंड भर के, और आपको बताया कि इस चावल को चेक करके बताओ कि इसका कैसा क्वालिटी है, चेक करना है आपको, क्या करोगे? हाँ, थोड़ा सा हाथ में लोगे और उसको जो भी जिस प्रकार से आप करोगे, आप थोड़ा सा लेके उसको चेक करोगे, और वो चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये चावल की क्या क्वालिटी है, है ना? आप क्या करोगे, उसी को थोड़े से राइस को ही देखोगे। उसी प्रकार भगवान कृष्ण एक भंडार है, बहुत बड़ा चावल का, एकदम बहुत बड़ा माउंटेन जैसा, बहुत विशाल है। उन भगवान का, भगवान के प्रेम का या भगवान के दिव्यता का यदि आपको टेस्ट करना है, वो तो एकदम विशाल दिव्य भव्य है। उनको रियलाइज करना है, उनको उस दिव्यता का अनुभव करना है, अनुभूति लेना है, तो क्या करोगे? तो आपके अंदर वो इतने बड़े विशाल भव्य दिव्य भगवान का जो छोटा सा इतना सा चावल के जैसा इतना वो आत्मा इधर बैठा है, उसको जब आप चेक करोगे तो आपको पूरे भगवान कैसे है, उनकी दिव्यता क्या है, उसका परिचय हो जाएगा, वो पता चल जाएगा। रियलाइज, पता चल जाना मतलब साक्षात्कार होना, अनुभव होना, अनुभूति प्राप्त करना, रियलाइजेशन होना। तो इस प्रकार से आप अपने आत्मा का चेक कर सकते हैं और इस प्रकार से भगवान की भी बारे में, भगवान का भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 2.30। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं श्लोक संख्या 11 से 30 तक भगवान ने दो तीन बातें ऐसी बताई, देह देही, नित्य अनित्य, सत असत, अविनाशी विनाशी। देखा आपने 11 से 30 तक ऐसी बातें बहुत बार आई है, क्या है? अविनाशी विनाशी, मतलब नित्य अनित्य, फिर क्या है? देही देह, मतलब जिस प्रकार से बिहारी, अमेरिकी, हिंदुस्तानी, मद्रासी, इसका अर्थ क्या है? मद्रासी मतलब मद्रास में रहने वाला, बिहारी मतलब बिहार में रहने वाला, उसी प्रकार से देही मतलब देही में रहने वाला है कि नहीं? यहां क्या कहा है? देही, सबसे पहला शब्द देही मतलब देह में रहने वाला आत्मा, क्या है? नित्यम अवधो, मतलब वो उसका वध नहीं किया जा सकता, वो मर नहीं सकता, उसका भेद, उसका वध नहीं किया जा सकता जब सॉरी देखिए ये बातें ध्यान से समझिए, ये पूरा सार है 30 श्लोक तक, 11 से 30 श्लोक। क्या? देही देह, अविनाशी विनाशी, सत असत, ये पूरा, ये जो बातें, ये भेद हमको समझना बहुत जरूरी है। शरीर सॉरी आत्मा अमर है, शरीर मरता नहीं, आत्मा अमर है, शरीर मरता नहीं, यह बात बहुत महत्व की। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये बिल्कुल नहीं समझेंगे। और आगे का ही अध्याय क्या है? कर्म योग। सारे अध्यायों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए, रोज 5-5 बार पढ़िए तो सब याद हो जाएंगे। यह सांख्य योग है, सांख्य योग में शरीर और शरीरी, देह और देही, मतलब शरीर और आत्मा के भेद का वर्णन किया है। जब तक इस भेद को हम नहीं समझेंगे कर्मयोग नहीं समझ सकते। कर्मयोग आगे का अध्याय है। तो हमको ये भेद समझ में आया क्या? ये भेद समझ में आया हो तो ही हमारा तीसरा अध्याय शुरू होगा। भेद मुख्य क्या है? शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है, शरीर जन्म लेता है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा भगवान का अंश है। यह बात, यह पक्की बात ध्यान में रखिए, शरीर और आत्मा दो डिफरेंट बातें हैं, अलग अलग है। शरीर भौतिक संसार से बना हुआ है, मतलब पंच तत्वों से बना हुआ है, और आत्मा दिव्य स्तर है, दिव्य स्तर पे है, भगवान कृष्ण का अंश है। मिनिमम इतनी बातें समझना आवश्यक है, क्योंकि तीसरा अध्याय जो कर्म योग से शुरू होता है उसके लिए यह भेद समझना आवश्यक है। और जब तक कर्म योग नहीं समझता तब तक ज्ञान योग नहीं समझेगा, और जब तक कर्म और ज्ञान नहीं समझता तब तक भक्ति योग नहीं समझेगा।
तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, इस बात को बार बार दोहराया जाएगा। और सारे संप्रदाय, संसार में जितने संप्रदाय है, जो आस्तिक है, जो भगवान को मानते हैं किसी भी रूप में, निराकार निराकार निर्विकार जो भी मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, वो सारे संप्रदाय इस भेद को मानते हैं। बाकी कुछ बातें मानो या न मानो, इस भेद को अवश्य मानते हैं कि शरीर और आत्मा दो भिन्न बातें हैं। इसलिए ये दो भिन्न बातें हमको पूरी भगवद गीता समझने के बाद पूरे जीवन भर याद रखना है। ऐसा मत सोचिए कि भगवद गीता के सत्संग तक ही याद रखना है, पूरे जीवन भर हमको याद रखना है। तो जीवात्मा का अस्तित्व भगवान का अंश है, आत्मा मरता नहीं है, शरीर अमर नहीं है, आत्मा को मृत्यु नहीं। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हिंसा करना चाहिए, इसकी अभी चर्चा हमने पहले की है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम आत्मा तो मरता नहीं तो मारो, फिर हम वो मार नहीं सकते। क्यों मार नहीं सकते? क्योंकि हमको अधिकार नहीं है। अधिकार भी तो कोई बात है ना, भले ही वो आत्मा मरता नहीं लेकिन हमको अधिकार भी कहां है? अधिकार भी आवश्यक है ना, तो अधिकार तो है नहीं, तो फिर भले ही आत्मा अमर है पर हमको अधिकार नहीं है। तो अधिकार कब प्राप्त होता है? जब हम धर्म के लिए युद्ध करते हैं तब अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। भगवान बता रहे क्यों शोक कर रहे हो, युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो, शोक नहीं करना चाहिए, युद्ध करो। तो भगवान की सेवा को भूलकर, भगवान की सेवा में यदि भूल हो जाए, भगवान की सेवा में यदि भूल हो जाए तभी शोक करना चाहिए, अन्यथा शोक नहीं करना चाहिए। भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं उसमें भूल हो गई है कि नहीं, तो बड़ा भगवान की भक्तों की कुछ अपराध हो गया, कुछ भूल हो गई, कुछ गलती हो गई, तब ही थोड़ा शोक करना चाहिए, अन्यथा शोक करने का कोई विषय है नहीं। जैसे हनुमान जी को एक बार बहुत शोक हुआ, हनुमान जी ने क्या किया, पूरी लंका जला दी, उनकी पूछ को जलाया, वो प्रत्येक घर में बैठ बैठ के सारी लंका का दहन कर दिया है? और फिर एक पेड़ पे बाहर आ गए, समुद्र में अपनी पूछ बुझाई और बाहर एक पेड़ में आके बैठ के और देख रहे और बड़े मस्त हंस रहे, वाह 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 लंका दहन हो गया, मैंने मेरे स्वामी की बहुत अच्छी सेवा की, बड़ा आनंदित हो रहे। अचानक उनको याद आ गया, अरे इस लंका में ही तो माता सीता है कहीं पे बैठी और मैंने इसको आग लगा दिया, हाँ अब कैसा होगा। इतना शोक करने लगे। सेवा तो बहुत बढ़िया की, सेवा तो बहुत अच्छी की भगवान की, इस लंका ही जला दी लेकिन सेवा करते करते अपराध हो गया, गलती हो गई, तो उस बात का बहुत शोक होना चाहिए, बहुत दुख होना चाहिए कि भक्त के प्रति अपराध हो या भगवान के प्रति अपराध हो, बड़ा दुख होना चाहिए, बड़ा शोक होना चाहिए। हनुमान जी बाद में बहुत दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि वो कुछ करने के अवस्था में नहीं रहे और विलाप करने लगे और भगवान राम को जोर जोर से पुकारने लगे। लेकिन भगवान तो सब समझते हैं कि भाव क्या है भक्त का। तो जैसे ही हनुमान जी को कुछ समय पश्चात पता चला कि माता सीता सुरक्षित है, उनके उस अशोक वन को आग नहीं लगी वो भस्म नहीं हुआ है, केवल बिल्डिंग ही जली है सब केवल सोना ही जल गया है, बाकी मिट्टी नहीं जली तो हनुमान जी प्रसन्न हुए, उनका शोक दूर हो गया। लेकिन यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि यदि सेवा में हमसे कोई गलती अपराध होता है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, तो अवश्य दुख व्यतीत करना चाहिए, शोक करना चाहिए, परंतु दूसरी कोई भी बात इतनी शोक करने वाली, शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि बात की सारी बातें अस्थिर अस्थाई है। हरे कृष्णा। पूछिए। प्लांट क्यों लगाते हैं, काट के प्लांट क्यों लगाते हैं, उद्देश्य क्या होता है इसके लिए, आपके लिए
तो फिर ठीक है, भगवान की सेवा में चलेगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी इसका हत्या करना ठीक नहीं है। परंतु वेदों में एक श्लोक है, ये जो जीवन है ये एक जीवन दूसरे के दूसरे जीवन के ऊपर, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीवन एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है। तो उस अपने जीव का पालन पोषण करने के लिए हम सारे अन्न धान्य वनस्पति को मारते हैं, उससे हम हमारा अन्न तैयार करते हैं और वो भगवान को भोग लगाते हैं, और नहीं वो भगवान को भोग लगाते हैं और वो हम खाते हैं। ठीक है, वो हम जब खाते हैं तो उसको दोष नहीं है, उसको दोष इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान के भोग में गया है। अब इसके व्यतिरिक्त आप जो भी काट पीट करते हैं, जो भी वृक्ष तोड़ते हैं या कुछ भी तोड़ते हैं, झाड़ तोड़ते हैं, पेड़ तोड़ते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं है तो निश्चित ही कर्म दूषित हो जाते हैं। आत्मा तो निश्चित तौर पे आत्मा तो निकल ही जाएगी, आत्मा तो उसके कर्मों के अनुसार, आप नहीं तोड़ेंगे तो दूसरा कोई आके तोड़ लेगा उसको। यदि उस आत्मा को उस प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना है, आपने तोड़ दिया, क्योंकि उस आत्मा का उस क्षण उस योनि से दूसरे योनि में जाना तय था उसके संचित कर्मों के अनुसार, ये निश्चित बात है। कोई भी सीजन हो, रेनी सीजन तो निमित्त है, भगवान जैसे बोल रहे कि अर्जुन तुम तो निमित्त हो, इनका तो डेफिनेट हो चुका है सब। हाँ, जो भी है प्लांट भी ज्यादा है तो आप एक ऐसा कर सकते हो उनको निकाल के उसको प्रश्न में आत्मा ज्यादा है, प्रश्न क्या है एग्जैक्टली, आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? ये मैं समझ गया कि कुछ जलते हैं कुछ उगते हैं, दस में से आठ उग गए दो जल गए, अब क्या प्रश्न है? तो ये प्रश्न है, मैं वही बोलूं प्रश्न क्या है। इसका मतलब ये हुआ है कि किसी ने एक समय पहले ऐसा प्रश्न पूछा था, मैंने उस दिन भगवद गीता के शायद एक क्लास में बताया था कि किसी ने प्रश्न ये पूछा था हमको कि प्रभु जी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, आपको याद है ये प्रश्न का उत्तर? तो सेम फिलोसॉफी हुई है, सेम बात है, क्योंकि इस संसार का इक्विलिब्रियम भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस संसार को बैलेंस रखते हैं। वो तो आपके पास 10-20 झाड़ उग गए हैं और किसी के पास नहीं उगे हैं, या किसी के पास करोड़ों पेड़ उग गए हैं और किसी के पास बंजर जमीन है। अल्टीमेटली ये जो प्रकृति है, जो भगवान की शक्तियां है, ये एक ही कार्य करते रहती है। वो क्या करती है? इस प्रकृति को बैलेंस रखती है। हम तुम कुछ नहीं, हम 10 पेड़ इसलिए नहीं उगा रहे कि हमको प्रकृति को बैलेंस रखना है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम केवल लगा सकते हैं, पर उसको इसी जगह पे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, कितने बढ़ाना है, ये उस शक्तियों के ऊपर, भगवान के ऊपर, उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। इसको बैलेंस करना भगवान की शक्तियों का कार्य है। लगाना आपका कर्म है, आपने लगाया है, परंतु जितना उगा है वो उगा, क्यों उगा? क्योंकि भगवान उन जीवों को उस समय उस स्थिति में उस काल में वहां उगाना चाहते हैं। स्थिति काल परत्वे उस जीवात्माओं को वहां आश्रय शेल्टर मिलना है उनके कर्मों के अनुसार, और क्योंकि उनके कर्मों के अनुसार उनको वहां आश्रय मिल रहा है और वहां वो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम बैलेंस रखना चाह रहे हैं। तो ये जो कर्मों का लेखा जोखा है वो उसका पास्ट, उसके पीछे वह कारण है। परंतु बारिश में बहुत सारे पेड़ उगते हैं, गर्मी में नहीं उगते हैं, ठंडी में नहीं उगते हैं, इसके पीछे भी मुख्य तत्व तो वही है कि प्रकृति को बराबर बैलेंस रखा जाता है, इक्विलिब्रियम पे रखा जाता है। हम भले ही सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि प्रभु जी यदि बकरे नहीं खाए गए तो इतने सारे बकरे हो जाएंगे कि इंसान रह नहीं पाएगा, ऐसे लोग देते हैं तत्व, कहते हैं नॉनवेज वाले लोग कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई इंसान बकरों से ज्यादा बढ़ गए, तो इतने इंसान हो गए तो रस्ते पर चल नहीं पाएंगे, पहले इंसानों को खाना शुरू करो, तो वो नहीं होता है फिर बकरों पर क्यों? तो अल्टीमेटली भगवान इस प्रकृति को अपनी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। इसलिए कहीं पे 50 पौधे उगेंगे तो उसी घर में आप दूसरे कुंडी में 10 पौधे लगाओगे तो एक भी नहीं उगेगा, आपने सेम ट्रीटमेंट की है, सेम सीड डाले हैं, सेम खेत क्या जो भी किया है सब डाला है, परंतु इधर 10 उगे उधर एक भी नहीं उगे, एक उगे। इसका कारण यह है कि भगवान की शक्तियां ये सब बातों को नियंत्रित करती है। ये नहीं कि हमने तो बहुत हाई क्वालिटी की मट्टी लाई, बेस्ट क्वालिटी का सीड लाया, एकदम फिल्टर वाटर डाला उसमें। वो दैट इज वो केवल निमित्त है। भगवत गीता का उद्देश्य ये भगवान अर्जुन को यही बोल रहे कि ये सब जो कार्यकलाप होते हैं ये निमित्त है, बाकी मुझे जो करना है वो तो कर चुका हूं। तो यह जो है ये निमित्त होता है, बैलेंस होता है, इसमें अपने कर्म, भगवान की कृपा, उस सीड के या उस जीव के पहले कर्म, ऐसे बहुत सारे फैक्टर एकत्रित आते हैं। हमको समझने वाली एक ही बात है कि हम अपने अच्छे कर्म कैसे करें। ये पेड़ इधर 10 और इधर 25 उग गए, इधर के 5-7 मर गए, इसमें मुझे कोई कर्म दोष लगा गया? ये मेन, मैं ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसमें का मेन प्रश्न ये होना चाहिए, इधर 50 उग गए, उधर 10 जल गए, उधर 50, वो कुछ भी हो जाए, इसमें मुझे कुछ कर्म दोष लग रहा है क्या? ये फैक्टर महत्व का है। वो पौधा तो उसके कर्म के अनुसार उगेगा, बुझेगा, जो भी होगा। भगवान तो अपने शक्तियों के द्वारा इक्विलिब्रियम मेंटेन, बैलेंस रख रहे हैं। इस सब में मैं बीच में कैसे आ गया? और यदि मैं बीच में आ गया तो मुझे कोई कर्म दोष लग रहा है क्या? यह देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य में यदि हमारी भगवत सेवा यह उद्देश्य है तो किसी का कर्म दोष नहीं लगता। यह बात ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? हाँ हाँ, हमारे संपर्क में जो वस्तु, जो विषय, जो व्यक्ति है, उस वस्तु को, उस विषय को, उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण के रिलेशनशिप में देखना है, भगवान कृष्ण के संबंध को जोड़ के देखना है। रिक्शा में बैठे हो अभी, आपके पास तो बाइक है, पर रिक्शा में कभी जा रहे हैं, रिक्शा पकड़नी है समझो आपको, तो देखना चाहिए कि रिक्शा मुझे मिल गई है, रिक्शा कहाँ से आई, ड्राइवर कैसा, कि इस परिस्थिति में क्यों है, ये जो ड्राइवर है ये वास्तव में ज्ञान समझ रहा है क्या, इसका आत्मा है, शरीर है, ये सब समझ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, ये जो भी कुछ इसका है, परंतु ये सब बातें भगवान से कैसे रिलेटेड है, ये ड्राइवर, ये रिक्शा किस प्रकार से भगवान से रिलेटेड है? तो रिक्शा मतलब क्या? प्रकृति 5 तत्वों से बनी है। ड्राइवर मतलब क्या? शरीर और जीव, प्रकृति भी है और जीव भी है, तो ये शरीर नहीं है, ये जीव है, और ये जीव भगवान का अंश है। इस प्रकार से इन सब को भगवान से रिलेट कर देना। जब आप इस प्रत्येक वस्तु, विषय, व्यक्ति को भगवान से रिलेशन में लगाओगे, तो आप धीरे 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 मैं शरीर नहीं हूं इस कल्पना के बाहर आ जाओगे, और ऑटोमेटिकली जब इस आइडिया के, इस कल्पना के बाहर आओगे, तो ऑटोमेटिकली सोचने लग जाओगे कि मैं आत्मा हूं। डिफिकल्टी एक ही है, मैं आत्मा हूं समझना डिफिकल्ट नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं समझना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मेरे शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है वो भगवान से कनेक्ट करना, जो कुछ भी वस्तु, विशेष, जो कुछ भी है। जैसे कोई वस्तु है तो वो वस्तु, कोई भी वस्तु पंच तत्व से बनी हुई है, वो भगवान की बाह्य शक्ति है, वो माया द्वारा संचालित होती है, वो भगवान की बाह्य शक्ति है। तो वो यदि भगवान की बाह्य शक्ति है तो भगवान कौन है? कृष्ण है। तो भगवान यदि कृष्ण है तो भगवान का और मेरा संबंध क्या है? तो मैं भगवान का अंश हूं। कोई भी वस्तु को भगवान से कनेक्ट करो और फिर अपने को भगवान से कनेक्ट करो तो रिश्ता समझ में आ जाएगा, दोनों भाई भाई हो जाएंगे। मैं भी भगवान का अंश हूं, ये भी भगवान की शक्ति है, हम भाई भाई है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए प्रत्येक, इसलिए समदर्शी, इसी को समदर्शी कहते हैं। जब हम समदर्शी हो जाएंगे तब हम इस स्तर पर आ जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं। सबसे मुख्य बात है मैं शरीर नहीं हूं इसका प्रैक्टिस करना। इसका प्रैक्टिस करने के लिए यदि मेरे माता पिता मेरे सामने है तो मैं उनको भी देखूंगा कृष्ण से कैसे रिलेटेड है। फाइंड आउट, सोचो 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 सोचो, सोचते सोचते पता चल जाए ये कृष्ण से रिलेटेड है। अब 5 विषय तो आपको पता है, ईश्वर, जीव, काल, कर्म, सब पता है, प्रकृति, 5 विषय पता है। 5 विषय के अलावा कोई कुछ है नहीं, जो भी कुछ आपके संपर्क में आता है 5 विषयों में है। तो जो भी कुछ संपर्क में आता है वो सब प्रकृति है, और प्रकृति का परिणाम कैसे हो रहा है? समय के अनुसार हो रहा है। तो समय, प्रकृति तो आप जानते ही है, उसको ईश्वर के साथ कनेक्ट कर दो। ये अपना पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में हो चुका है। तो इन शॉर्ट, प्रत्येक बात को भगवान से कनेक्ट करो, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप अपने आप को शरीर न समझते हुए अपने शरीर को भी भगवान से कनेक्ट कर दोगे और फिर आत्मा का अस्तित्व आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। और इसमें दूसरा बाय प्रोडक्ट, दूसरा लाभ साइड बाय साइड ये होगा कि आप बाकी सभी वस्तु विषय व्यक्ति को भी भगवान का अंश मानोगे, भगवान से रिलेटेड मानोगे तो उनसे प्रेम करोगे, डबल बेनिफिट, अपराध कम हो जाएंगे, है कि नहीं, एक पे एक फ्री दिवाली ऑफर ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महाप्रसाद।